कहीं ना कहीं उन्हें डर भी लग रहा था। उन्हें अपने पोते के हर हर हरकतों का अच्छी तरह पता था। वहीं उन चारों दोस्तों का रंग भी पूरी तरह उड़ गया था और सभी अंदर क्या हो रहा है इस बात को लेकर चिंतित थे। जल्दी ही अरमान ने दरवाज़ा खोल दिया और जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, सबसे पहले दादाजी अंदर गए और अरमान की ओर देखकर बोले, क्या हो रहा है यहाँ? ये शॉट की आवाज़ कैसे आई? आखिर तूने ऐसा क्या किया है? वो चारों भी अंदर आ गए और अंदर जाकर उन्होंने इधर उधर चारों तरफ अच्छी तरह से देखना शुरू किया, लेकिन आस्था बेड पर नहीं थी। अब तो दादाजी और बाकी सबके दिल जोरों से धड़कने लगे। कहीं ना कहीं उन्हें लगने लगा कि जरूर अरमान ने आस्था को ही गोली मार दी है। धीरे धीरे जैसे ही वे लोग कुछ कदम आगे बढ़े तो उन सबके कानों में रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। उस आवाज़ को सुनकर सबने राहत की सांस ली, क्योंकि आस्था काफ़ी डर गई थी और वो हिचकियां लेकर रो रही थी। अरमान की मौजूदगी की वजह से वो काफ़ी डरी हुई थी, इसीलिए उसने खुद को दुपट्टे से ढक रखा था, जिस वजह से उसका चेहरा अभी तक किसी ने नहीं देखा था। जल्दी ही दादाजी उसकी ओर गए और आस्था को उठाने लगे। आस्था ने जैसे ही अपने पास दादाजी के हाथ पाया तो उसने राहत की सांस ली। वो खुद को शांत करने लगी, लेकिन उसका पूरा जिस्म इस वक्त पूरी तरह से कांप रहा था, जो कि घूंघट और उसके भारी भरकम लहंगे में भी दिखाई दे रहा था। दादाजी गुस्से से अरमान की ओर देखकर बोले, ये क्या बदतमीजी अरमान, ये क्या किया तूने? तूने बहू को क्यों धमकाया? अरमान ने कहा, दादाजी आपके कहने से मैंने ये शादी की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इस रिश्ते को निभाऊंगा। आखिर क्यों आपने इस लड़की को मेरे कमरे में भेजा? आपको इसे इस तरह से मेरे कमरे में नहीं भेजना चाहिए था। आप शुक्र मनाइए कि मैंने गोली इसके सर में नहीं चलाई। अरमान ने बड़े ही रूठ तरीके से ये सब कहा। तभी सुमित आ गया और बोला, ये गलत बात है अरमान ब्रो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरमान गुस्से से सुमित की ओर देखकर बोला, सुमित मुझे लगता है कल से तुम्हें अपने ऑफिस चले जाना चाहिए, काफी समय हो गया तुम्हें अपने ऑफिस के दर्शन किए हुए। अरमान ने सीधे सुमित की बेइज्जती की। सुमित ने मुंह बना लिया और पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। आकाश ने एक और कोशिश की और बोला, लेकिन सुमित ने ऐसा क्या कहा? अरमान तुम्हें इस तरह की हरकत भाभी के साथ नहीं करनी चाहिए थी। अरमान को और ज्यादा गुस्सा आ गया। वो बोला, तुम अपनी बकवास बंद करो आकाश, और किसने कहा कि ये लड़की तुम्हारी भाभी है? कोई जरूरत नहीं है इसे भाभी वगैरह कुछ भी कहने की, समझे तुम लोग? जाओ जाकर अपना अपना काम करो, पार्टी कर रहे थे ना तुम सब, जाकर अपनी पार्टी एंजॉय करो। ध्रुव हैरानी से सोचने लगा कि ये तो पार्टी में था भी नहीं, तो फिर इसे कैसे पता चला कि हम सब पार्टी कर रहे थे? ध्रुव ने आकाश और आहान से कहा, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। दादाजी आस्था को लेकर वहां से जाने लगे और अरमान की ओर देखकर बोले, मैं तुमसे इस बारे में बाद में बात करूंगा। ऐसा कहकर वे आस्था को जल्दी ही बाहर ले गए और उसे एक गेस्ट रूम में ले गए। आस्था को दिलासा देने लगे। अब तक आस्था काफी ज्यादा नॉर्मल हो गई थी। दादाजी ने आस्था की ओर देखकर कहा, बेटा माफ करना, मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी हुई है, लेकिन उस वक्त हमारी भी मजबूरी थी और कोई रास्ता नहीं था इस सिचुएशन से निकलने का, इसीलिए हमने तुम्हें मजबूर करके अरमान से शादी करवाई, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाती बेटा, और तब अरमान तो पूरी तरह से गुस्से में पागल हो उठता और वो तुम्हारी पूरी फैमिली को जान से मार देता। तुम नहीं जानते कि उसका गुस्सा कितना ज्यादा खतरनाक है। अब तक तुम्हें इस बात का अंदाजा तो अच्छी तरह से हो ही गया होगा कि तुम्हारे सिर्फ बेड पर लेटने की वजह से उसने तुम पर गोली चलाई। अब तुम सोच सकती हो कि बात जब उस इंसान की इज्जत पर आ जाती है तो वो किस हद तक गुस्से से पागल हो जाता है। इसीलिए सबकी भलाई के लिए हमने ये फैसला लिया। हम जानते हैं हमारे पोते का बर्ताव कैसा है और शायद पूरी तरह से गलत भी है, लेकिन हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम उस वजह को जानते हैं जिस वजह से हमारा पोता ऐसा बन गया है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही उम्मीद है कि तुम उसकी हमसफर बनकर सब कुछ ठीक कर दोगी। एक औरत अपने प्यार से सब कुछ ठीक कर सकती है। हम चाहते हैं कि तुम अरमान को पूरी तरह से बदल दो। हम वादा करते हैं, यह आलोक सिंधानिया का वादा है, अगर तुम हमारे पोते में बदलाव ला देती हो और उसे अपने परिवार में रहना, हंसना बोलना, अपने साथ खुश रहना सिखा देती हो, तो हम तुमसे वादा करते हैं कि हम तुम्हारे डॉक्टर बनने की पढ़ाई पूरी करवाएंगे और अरमान के खिलाफ जाकर तुम्हारी हेल्प करेंगे। जैसे ही आस्था ने यह सुना, एक बार फिर उसकी आंखों में उम्मीद की चमक नजर आ गई, क्योंकि जब उसकी अरमान की शादी हुई थी तब वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसके सारे सपने कहीं ना कहीं चकनाचूर हो चुके थे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको आज का चैप्टर कैसा लगा प्लीज जरूर बताएं। अपने कीमती रिव्यू देना बिल्कुल ना भूलें।